جاتے ہیں، ہستناپور جاتے ہیں، آپ کی جدائی ہم کو بہت جو ہے وہ دکھ دیتی ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ بھگوان سمے سمے کے اوپر یہاں آیا کرتے تھے ہستناپور اور متھرا آدی میں۔ تو یہاں دو ادھیاوں کے بعد پریکشت مہاراج، یہ بھی پریکشت کی مہما ہے کہ اس گھر میں بھگوان آیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے جس گھر میں پریکشت کی کا جنم ہوا ہے، اور پریکشت کا نام بھی، جنم کا نام وشنو رات تھا، جس کی وشنو رکشا کرے، لیکن اس کا نام پریکشت اس لیے رکھا کہ وہ جس کو دیکھتا تھا اسی کو دیکھتا ہی رہتا تھا، اور یہ پریکشا لینے کا پریاس کرتا تھا کہ میری ماں کے گرجھ میں رکشا کس نے کی تھی، یہ تو نہیں ہے، پھر آنکھیں ایسی کرتا تھا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تین یگیہ کیے تھے بھگوان شری کرشن نے یدھشٹھر مہاراج کے دوارا، تین اشومیدھ یگیہ کرائے۔ تو ایک یگیہ کے اندر جب بھگوان شری کرشن آئے ہوئے تھے تب پریکشت کا جنم ہو چکا تھا، چھوٹا سا بالک پریکشت گود میں اٹھا کے داسی لائی، بالک یدھشٹھر کی گود میں بیٹھا ہوا نیچے اترا، جہاں شری کرشن بیٹھے تھے وہاں کھڑا ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا، اور دیکھتا ہی رہ گیا، آنکھیں وہاں سے ہٹائے نہیں، مسکرا بھی رہا ہے، تھوڑا سا سندیہ بھی ہو رہا ہے۔ ویاس دیو بیٹھے ہوئے کرشن کو کہا، ہے وسو دیو، یہ بچہ آپ کو پہچان گیا ہے، یہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کا نام پریکشت اس لیے ہے کہ یہ سب کی پریکشا لکھتا ہے کہ میری رکشا میری ماں کے گرب میں کس نے کی تھی۔ آپ کو پہچان تو گیا ہے دیکھ کر، اس کو ایک سندیہ رہتا ہے، آپ نے جب رکشا کی تھی اترا کے گرب میں تب آپ کے چار ہاتھ تھے، اب آپ دوی بھوج روپ میں دو ہاتھوں میں ہو۔ تب بھگوان شری کرشن نے مسکراتے ہوئے اپنا چترگھج روپ کیا، پریکشت نے درشن کیا اور آنکھیں بند کی۔ اس دن کے بعد پریکشت نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پریکشت کو تو ایسے تیار کیا جا رہا تھا ان دو کلوں کے دوارا، جیسے وسودیو اور دیوکی کو کاراگیا میں رکھ کے سنسار کی درشٹی سے کشٹ دیا جا رہا تھا، لیکن ان کے گھر میں بھگوان کا اوتار ہونا تھا۔ آج یہاں پریکشت کے یہاں بھاگوت کا اوتار ہونا ہے، اس لیے پریکشاؤں سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد پریکشت کے کل میں دھرتراشٹر کا بھی ادھار ہوا، اس کا ورنن۔ اب دھرتراشٹر بھی کوئی سادھارن ویکتی سنسار کا نہیں تھا، ویاس دیو کا پتر تھا، پانڈو ویاس کا پتر تھا اور دھرتراشٹر بھی ویاس کا پتر تھا، لیکن دھرتراشٹر کو نام دھرتراشٹر کا ارتھ ہے جو دوسرے کا راشٹر ہڑپ کر لے۔ دھرت راشٹر، جو راشٹر کسی اور کا ہو اس کو ہڑپ کر لے اس کو دھرت راشٹر بولتے ہیں۔ حق تو تھا پانڈو کا لیکن اس نے کر لیا ہڑپ۔ آج دھرت راشٹر مہابھارت یدھ کے بعد، سو پتروں کے مرنے کے بعد بھی ہستناپور میں رہ رہا ہے۔ مہاراج یدھشٹھر تو اپنے پتا کے سمان، پتا سے بھی ادھک اپنے تاؤ کا سمان کر کے سیوا کرتے ہیں، لیکن ودر دھرتراشٹر سے بہت پریم کرتا ہے۔ ودر کون ہے؟ ودر بھی نیاس کا پتر ہے لیکن وہ داسی سے۔ یہ تیسرے اسکند میں ودر کی کتھا آئے گی، لیکن اب ودر کا اتنا ہی سنکیت دیتے ہیں کہ ودر مہابھارت یدھ کے بعد جب یہ پتا لگا کہ دھرتراشٹر ابھی تک پانڈووں کے پاس ہستناپور میں رہ رہا ہے، تو اس نے کہا اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے، اس کا بھی ادھار کرنا چاہیے۔ ودر واپس ہستناپور آیا، یہ سماچار مہاراج یدھشٹھر کو ملا۔ یدھشٹھر مہاراج ودر کو اپنے ساری سبھا کو لے کر سواگت کرنے گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے، پتا تو ہم نے ہمارا دیکھا نہیں تھا، پانڈو تو چھوٹے چھوڑ کے ہم کو چلا گیا تھا، ہر مشکل کے سمے آپ نے ہماری رکشا کی ہے ودر، کاکا ودر آپ نے ہماری ہر سمے رکشا کی ہے، لاکشا گرہ میں بھی آپ نے رکشا کی تھی، وش دیا تھا جب ہمارے بھیم کو دریودھن نے، تب بھی آپ نے رکشا کی تھی، ہر سمے آپ ہماری جیسے آنکھیں پلکوں کی پلکیں آنکھوں کی رکشا کرتے ہیں ایسے رکشا کی تھی، آج آپ واپس آ گئے ہم سمجھتے ہیں ہمارا بہت بڑا بھاگیہ ہے۔ ودر مسکرا رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں، विदुर तो किसी उद्देश्य से आए थे, रात को सब सो जाते थे, तब धृतराष्ट्र को उठा के कहते थे, अभी तक यहाँ क्यों पड़े हो, तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, अभी भी तुम यहाँ राज का भोग करना चाहते हो। धृतराष्ट्र, तुम भीम के टुकड़ों के ऊपर पड़ रहे हो, कुत्ते की तरह जिसको लाठी मारता है फिर भी पान रोटी खाने जाता है, जैसे भीम ने तेरे 100 पुत्र मारे, तुम इसी के पास क्यों रह रहे हो। धृतराष्ट्र को हिला दिया विदुर ने सत्य बताकर। वहां श्रीमद् भागवत में लिखा है, साधु संत महात्मा लोगों को जगाने के लिए होते हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं, गाने बजाने के लिए नहीं होते हैं, सोए हुए आदमी को जगाने के लिए होते हैं। माया की गोद में सोया हुआ आदमी नहीं जागेगा तब तक वो संसार के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहेगा। धृतराष्ट्र, तुम राज में रहोगे, मरोगे तो फिर कुत्ते की जूने में जाओगे। जो घर में आसक्ति करके मरता है वो अपने घर के बाहर कुत्ता बन के आता है और घर वाले ही उसको लाठी मारते हैं, और धन में आसक्ति रख के मरता है अपने ही घर में सांप बिच्छू बन के आएगा और अपने ही धन के ऊपर चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन जिसने धन इकट्ठा किया है उसी को ही घर वाले मारेंगे। तो अब घर की आसक्ति से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर का एक नाम है अनिकेत। अनिकेत उसको इसलिए कहते हैं कि उसने घर अभी तक नहीं बनाया, घर है नहीं, बाबा बाबा भोलेनाथ के पास घर नहीं है, वो कैलाश में रहते हैं ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हुए, घर बनाया ही नहीं। त्यागी वैरागियों में सर्वश्रेष्ठ है, घर बनाएगा तो आसक्ति होगी ना, मेरा है तो मरते समय घर ही याद आएगा, ऐसे नहीं है। दुर्गा जी एक बार बहुत प्रश्न, दुर्गा जी ने कहा नहीं ये घर बनना चाहिए हमारा, बड़ा अच्छा बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा घर भवन बनाया शंकर जी ने, बहुत बड़ा भवन बन गया, बोला गृह प्रवेश करना है, पूजा करानी है, ऋषियों को बुलाया, हाँ जी आ गए, बहुत बड़े ब्राह्मण महात्मा आ गए, गर्ग महाराज आ गए, गृह प्रवेश तैयार हुआ, बोला आप दक्षिणा दीजिए। शंकर जी बोले मैं कुर्ता भी नहीं पहनता हूँ, जेब भी नहीं, तो पैसा कहां से लाऊं, दक्षिणा किधर से दूंगा, मेरे पास तो कुछ दक्षिणा के लिए न बैंक है, न चेकबुक है, न पैसा है, मैं तो कुछ रखता नहीं, तो आपको दक्षिणा देनी है, चलो ये घर आपको संकल्प करके दक्षिणा देता हूं। वो घर उनको दिया और दाखो वापस जाकर उधर ही बैठे जब पहले बैठे। तो ये और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लक्षण, जो मुझे भक्त बहुत प्रिय है उनमें कह रहे, अनिकेत निकेत भक्तिमान में प्रियो नर, जो घर नहीं बनाता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो यहां आज युधिष्ठिर को इसलिए, हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग आदमी होते ना समझदार होते थे, अपने नाम से घर नहीं बनाते थे, बेटे पोते के नाम लिख देते थे, कम से कम आसक्ति होगी तो तीसरी पीढ़ी को होगी, मैं तो छूट जाऊंगा ना, ऐसे देखा लिखते थे, अपना नाम नहीं लिखते थे किसी और का, या पूरे दादे का नाम लिखते थे, वो पहले चला गया उसको क्या आसक्ति अभी हुई, ये मेरे दादा का घर है तो अच्छा है, जान छूट गई, ये बुद्धिमानी हुआ करती थी उनकी, आसक्ति नहीं होगी, मेरा नाम होगा तो मैं सब बताएगा ना मेरा है, तो यह मेरा नहीं होगा, पोते के नाम लिख दिया या दादा के नाम लिख दिया चल जाएगा काम। तो धृतराष्ट्र को ऐसा विदुर ने उपदेश किया कि धृतराष्ट्र रात को तैयार हुए राजमहल छोड़ने को। धृतराष्ट्र के पांव के आवाज को सुन के गंधारी उठी, का पतिदेव मुझे कहां छोड़ के जाएंगे, जब अब तक आपका साथ दिया है तो अब जहां जाएंगे आप वहां मैं आपके साथ रहूंगी, तो गंधारी भी साथ चली है। गंधारी को भागवत सती सती कहती है, पतिव्रता नारी में गंधारी का नाम अद्भुत है, आंखें तो भगवान ने दो बहुत सुंदर दी थी, जिस दिन पता लगा मेरा पति आंखों से नहीं देखता है, बोला जिस संसार को मेरा पति नहीं देखता है उसको मैं भी देखना पसंद नहीं करूंगी, और उसने कभी नहीं देखा, आंखों के पट्टी बांध दी थी। आज गंधारी भी चली है, रात को ये तो निकल गए, सुबह उठते भी युधिष्ठिर महाराज कहते कहते कहां चला गए, ताऊ जी कहां चले गए, विदुर भी नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है, माँ गंधारी नहीं है, हमसे अपराध हो गया, हमने उनकी सेवा नहीं की, क्या कहां चले गए, कहां चले गए, दूर चारों ओर से बड़े दुखी हो गए। संजय से पूछा, संजय ने बोला आज तो हमारे मालिक हमसे भी धोखा करके चले गए, हमको भी मालूम नहीं कहाँ चले गए, रात को यहाँ थे। इसी दिन में नारद वहां आया। नारद ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, वो तो उत्तर दिशा में चले गए। आज के पांच दिनों के बाद योग अग्नि से धृतराष्ट्र अपने शरीर को त्याग देगा, गंधारी उसमें प्रवेश करेगी और विदुर वहां से चल देगा। युधिष्ठिर महाराज, इस संसार में सदा के लिए कोई भी नहीं रहेगा, वो समय दूर नहीं है जब भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम चले जाएंगे। ये संकेत युधिष्ठिर महाराज को नारद देके वहां से चले गए। इसके बाद परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन है। महाराज परीक्षित का समय के ऊपर जब जन्म होता है तो युधिष्ठिर महाराज के घर में पहली बार ये पोता पैदा हो रहा है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिया। पंडितों से जब जन्म पत्री माया निकाल के पूछने लगे तो पंडितों ने बताया बलि की तरह ये दानी होगा, आपकी तरह धीर होगा, अपने वचन की रक्षा करने वाला होगा और जो जो सद्गुण है भगवान श्री राम की तरह अस्त्र शस्त्र लगाने में चलाने में प्रवीण होगा। ऐसे परीक्षित महाराज की जन्म के समय जो ब्राह्मणों ने उसका जो जन्म पत्री बताई अद्भुत थी। लेकिन एक बात है, सम्राट बनेगा, पूरे विश्व का राजा बनेगा, लेकिन एक समय के ऊपर ब्राह्मण का श्राप भी इसको प्राप्त होगा। परीक्षित का समय आने के ऊपर विवाह हुआ उत्तर कुमार की बेटी से, पुत्र भी हुए परीक्षित को जन्मे जी आदि। उस कन्या को जिसका विवाह हुआ था परीक्षित महाराज के साथ, अरावली, अरावली के अरावती नाम था, उसको पंडितों ने उसका जन्म पत्र देख के कहा था आप बहुत भाग्यशाली नहीं हो, आप किसी चक्रवर्ती महाराज की महारानी बनोगी, पुत्र तो होंगे, संतान वतन आपके घर में, लेकिन एक एक ग्रह ठीक नहीं है। आपका पति कभी विशेष एक दिशा में शिकार करने जाए तो उसको मना करना, अगर जाए भी तो कहना किसी ब्राह्मण का अपमान न करे, लेकिन जो होनी होती है उसको कोई नहीं टाल सकता। पहले बता भी दिया जाए तो भी समय आने के ऊपर आदमी सब कुछ भूल जाता। इसके बाद परीक्षित महाराज के दिग्विजय का वर्णन है। अब परीक्षित की महिमा क्या बताते हैं, जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया। अब कहते हैं परीक्षित महाराज कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। दिग्विजय, दिग्विजय किसको कहते हैं, दिशाओं को, चारों दिशाओं में नहीं दसों दिशाओं में। दस दिशाएं हैं भारत संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में दस दिशाएं हैं। इसलिए महाराज दशरथ, रामचंद्र के पिता का नाम है दशरथ, इसका मतलब उसका रथ दस दिशाओं में चलता है। वो आकाश मार्ग से स्वर्गलोक में भी जाते थे, स्वर्ग देवताओं के लिए युद्ध करते थे तो ऊपर जाते थे, पाताल लोक में भी जाते थे, नीचे पाताल में लोग रहते हैं, नीचे तो सात लोग नीचे हैं पृथ्वी से। तो जिसका रथ दसों दिशाओं में जाए, आप ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, चार दिशाओं में और चार कोनों में चल सके, और इन दस दिशाओं के दस दिग्पाल हैं जो दिशाओं की रक्षा करते हैं, और दस दिग्गज हाथी हैं, वो हाथी और दिग्पाल इनकी रक्षा करते हैं, उनको कहते ही दिग्पाल दिग्पाल हैं। तो महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, चारों ओर जहां जहां जाए लोग पांडवों की महिमा गाएं, कैसे पांडव मान थे, कैसे उन्होंने हमारे राज्य के अपनी प्रजा की रक्षा की सुरक्षा की। तो परीक्षित को बड़ा आनंद आता था। इससे शिक्षा ये मिलती है, जिसके बड़े बुजुर्ग कोई अच्छा काम करने जाते करते जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उत्साह बढ़ता है कि हमारे दादाजी ने ये अस्पताल खोल के गए थे, कि ये धर्मशाला बना के गए थे, कि ये जलशाला बनाया है, कि ये मंदिर बनाया है। तो पोते दादे कहते आ रहे हैं हमारे कितने पूर्वज अच्छे थे, देखो कितने धर्म के कार्य करके गए हैं। तो अच्छा काम बड़े करके जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उसका गौरव होता है और उसको भी अच्छा बनना जरूरी बाध्य हो जाते हैं। अच्छे के सब अच्छे तक कुल के होगा तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, कहीं गलती भी करेगा तो देखेगा नहीं, सब लोग जानते हैं हमारे कुल को। तो आदमी इसलिए हम कहते हैं साधु को साधु का वेश तिलक आदि माला साथ ले जानी चाहिए। फायदा क्या है? फायदा ये है कि गलत काम नहीं करेगा। लोग कहेंगे साधु होकर गाली देता है, गाली देगा ही नहीं, बुराई करेगा नहीं। अगर आदमी साधु के वेश में होगा तो गलत काम नहीं कर सकता, गलत काम करेगा सभी लोग उसको देख लेंगे एकदम। तो इसलिए ये सुरक्षा का कवच है, ये जो सुरक्षा अपने आप को ठीक तरह बचा के रखने का कवच है। इसलिए हर एक आदमी जो समझता है कि मैं बुराई से बचूं, ठीक तरह तिलक लगाना चाहिए, माला हाथ में उठानी चाहिए और बड़े गौरव के साथ धोती पहन के, ये तो भारत संस्कृति का विलक्षण वेश है, इतना विलक्षण वेश है भारत संस्कृति का। ये हमको ये शिक्षा देने के लिए है कि इस दुनिया से आज तक कोई कुछ नहीं ले गया। क्या पहनते हैं ये पंडित लोग, क्या पहन के बैठे हैं? पुरुष क्या पहनता है वैदिक संस्कृति का? हाँ जी, धोती पहनता है, एक कपड़ा होता है, कोई सिलाई नहीं होती है और कोई जेब भी नहीं होता है धोती में। धोती में आज तक जेब नहीं बना है। और माताएं भारत संस्कृति के वैदिक शिक्षाओं की माताएं पहना करती थी साड़ी, और साड़ी में भी कोई चमका नहीं लगता, कोई जेब नहीं होता, न धोती में जेब है न साड़ी में जेब है। और जो दुनिया से जाता है उसके ऊपर जो दो गज कपड़े का टुकड़ा डालते हैं उसके ऊपर भी जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता, पता है ना, बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनाते हैं अंत में। क्या शिक्षा इससे मिलती है? कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जा सकता। ये वेश हमको पहले दिन से ये शिक्षा देता है, जो कुछ है यही भगवान का दिया, भगवान की सेवा में लगाओ, कुछ साथ जाएगा नहीं। ये वेश हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है, इसको गौरव से पहनना चाहिए। अभी तो बच्चे जिस पैंट में 15 जेब है वो अच्छा लगता है, ज्यादा पैंट जेब वाला अच्छा लगता है। ये संग्रह करने वाले हैं, संग्रह मतलब कथा करने वाले हैं। ये साधु वृत्ति नहीं है, ये बहुत नीचे स्तर की वृत्ति है। इसलिए महाराज जब दिग्विजय के लिए निकले तो अपने पूर्वजों की महिमा जगह जगह सुनने को मिली। तब महाराज परीक्षित को एक स्थान के ऊपर एक बहुत दुखदायक दृश्य दिखा। दुखदायक दृश्य यह था कि एक गाय थी, दुबली पतली आंखों से आंसू बह रही थी, थर थर कांप रही थी। एक बैल था, तीन टांगे टूटी हुई थी, एक टांग के ऊपर खड़ा था और दोनों के पीछे राजा का वेश पहना हुआ काला कुरूप आदमी हाथ में डंडा लेके दोनों को मार रहा था। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया का पांडवों के इस राज में गाय और बैल के ऊपर अत्याचार हो और मैं राजा हूं और मैं ये देखूं, ये संभव नहीं है। उसने उसकी ओर उठा आंख उठा के कहा कि तुम समझते हो भगवान श्री कृष्ण के चंद चिन्ह इस धरती के ऊपर नहीं है, इसलिए तुम गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। श्री कृष्ण के तो जन्म का उद्देश्य है गौ ब्राह्मण रक्षा, गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। अब गाय के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, मतलब जिंदा नहीं छोड़ सकता, परीक्षा का जब तक राज होगा तुम जिंदा नहीं रह सकते। इसी धरती के ऊपर किसी धरती का पुत्र परीक्षित था जिसने गाय और बैल की रक्षा की थी, आज इसी धरती के ऊपर गाय और बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे ही अपने लोग उन्हीं गाय और बैलों को और गाय को और बैलों को कहीं कहीं मरवाने के लिए भेज देते हैं। दूध नहीं देती है तो गाय को बाहर छोड़ देते हैं। अरे गाय को छोड़े तो क्या बात है, माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है चारों ओर से। युधिष्ठिर महाराज जब ध्यान में बैठते थे 2 घंटे तो अपने चारों भाइयों को बाहर खड़ा कर देते थे, कोई अंदर आ न पाए। मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं लेकिन किसी का कोई समस्या है उसका आप समाधान कर देना। एक बार एक भागता हुआ व्यक्ति आया पहले दरवाजे के ऊपर, भीम को कहा युधिष्ठिर महाराज से मिलना। महाराज तो भगवान के ध्यान में बैठे हैं श्री कृष्ण के, आप मुझे बताइए क्या सेवा है। बोला सेवा बताते हैं तो सुन लो, मैं आ रहा था रास्ते से, मैंने देखा एक कुएं के अंदर से एक आदमी ने एक बाल्टी पानी का निकाला। बोला अच्छा किया। बोला 9 बर्तन पानी के छोटे से भर दिए। बोला भर गए, अच्छा किया, बड़ी बाल्टी होगी। बोला वो तो ठीक है, पर मैंने देखा 9 बर्तन भरे हुए वापस बाल्टी में डाले, बाल्टी आधी पड़ी थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आदमी के सामने एक ही है, 9 मत के एक बड़े बर्तन से भरो, फिर वापस ये 9 उसमें डालो तो वो भर जाना चाहिए ना। ये हमको समझ में नहीं आता है, महाराज से पूछ लो। प्रश्न तो और भी 4 हैं, लेकिन इस एक प्रश्न के ऊपर अभी चर्चा करते हैं, समय मिला तो दूसरे प्रश्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे। समय आने के ऊपर महाराज युधिष्ठिर से पूछा भीम ने कि ऐसे मुझसे पूछा था, इसलिए कौन था? युधिष्ठिर महाराज ने कहा यह कलयुग था, ये कलयुग था, ये कह रहा था पहले एक घर में बड़ा हाथ होता था, बेटा बेटियां 4, 5, 7, 8, 9 परिवार, चाचे का मामे का सबका पालन पोषण करता था, एक आदमी कमाता था पूरे परिवार के 8-9 आदमी का पालन पोषण करता था, कलयुग कह रहा था। और कलयुग कह रहा है अब मेरा राज है, 9 कमाएंगे, एक घर में बेकार होगा तो उसको भी कोई पालने को तैयार नहीं होगा। इतनी दूर अभी समय इतना आगे नहीं बढ़ा है, 50 साल पहले एक ही आदमी घर का कमाता था और 8-8, 10-10 घर में परिवार में हमारे सदस्य हुआ करते थे और सबको पढ़ाया भी जाता था, लिखाया भी जाता था, शादियां भी होती थी, घर दुकान मकान भी एक बार बना के देता था। अब तो ये बच्चे तो एक दो है, वो घरवाली खुद कमाते हैं तब भी एक घर में बूढ़ा बस गया तो बोलेगा नहीं, इसकी पालन पोषण हमसे नहीं होगा, इसको बूढ़ा आश्रम में छोड़ के आओ। बूढ़ा आश्रम को हम कहते हैं बदमाश बच्चों का अत्याचार, जो कहते हैं ओल्ड एज होम अंग्रेजी में, हम उसका नाम लिखा है बदमाश बच्चों का अत्याचार। बच्चे जिसके नहीं संभालते उनको वहां भेजते हैं, तुम्हारे बच्चे जिंदा है तो वहां क्यों भेजने की जरूरत क्या? बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो नहीं करते हैं उनका यश कीर्ति और विद्या सब नाश हो जाती है। ये एक ही तो भारत संस्कृति के वैदिक संस्कृति ऐसी है जिसमें बड़ों का सम्मान करने सिखाया जाता है। माता पिता क्या बड़े गुरु, ये तो भगवद गीता में शरीर की तपस्या कही गई है, देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम, ब्राह्मण का, देवता का, भगवान का, ब्राह्मण का, बड़े बुजुर्ग माता पिता आचार्य गुरुजन को सेवा करना, ये सर शरीर का धर्म तपस्या है, नहीं चाहते हमें भी करनी चाहिए। एक स्त्री झगड़ा करती थी अपने पति से कि तेरा बाप सारी रात खांसता है, नींद खराब करता है, कुछ पका के देती है तो कभी कहता है नमक ज्यादा है, कभी कहता है ठंडा है, इसको आप जाके हरिद्वार छोड़ के आओ। पति बेचारा सारा दिन काम करके घर में आए फिर भी झगड़ा, बेचारा दुखी हो गया। पिताजी को कहा चलो पिताजी आपको हरिद्वार गंगा स्नान कराने चलता। पिताजी ठीक है बेटा तुम्हारी इच्छा। जब मुजफ्फरनगर से आगे गया थोड़ा सा जहां जंगल था वहां पिताजी को पेड़ के नीचे बिठा के कहा पिताजी आप बैठिए मैं आपके लिए जलपान का व्यवस्था करके आता हूं। बेटा जैसे मुड़ के जाने लगा पिताजी जोर से हंसने लगे और फिर रोने लगे। बेटा वापस मुड़ के आया पिताजी को कहता है पिताजी आप हंस क्यों रहे? बोला बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुम वापस नहीं आओगे, तुम मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि जलपान लेने लेकिन तुम मुझे यहीं छोड़ के जाओगे। बोला फिर पिताजी आपको रोना क्यों आ रहा? बोला बेटा रो इसलिए रहा हूं कि मैं भी मेरे बाप को यहीं छोड़ के गया था, मेरे बाप को मैं भी यहां छोड़ के गया था इसलिए रो रहा हूं कि मैंने किया था मेरे को आज भुगतना पड़ रहा है। बेटे ने जब ये सुना तो पिताजी को कहा कि आप चलिए गंगा स्नान भी कराता हूं वापस घर भी ले जाऊंगा। पत्नी ने कहा फिर इससे वापस मुसीबत को लाए? बोला 2-4 साल जितने दिन जिंदा रहे इसकी सेवा कर लो, नहीं तो हमारे बेटे भी हमारे को वहीं छोड़ के आएंगे जहां हम इनको छोड़ के आ रहे। तो मत समझना कि तुम सदा जवान इतने बड़े रहोगे, और तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरे बूढ़े का अपमान करने वाले को बूढ़ा होना पड़ेगा, ये भूलना नहीं चाहिए। बड़ों का सम्मान करना बहुत अति आवश्यक है। ये विद्या तो वैदिक विद्या है। पढ़ने के बाद घर जाते हुए स्टूडेंट को, शिष्य को गुरु कहता था मातर देवो भव, तेरी माँ तेरे लिए पूजने है, पितृ देवो भव। ये शिक्षा दे के घर भेजता था। अब स्कूल में कोई नहीं सिखाता है कि तेरे माता पिता का सम्मान करना, उसके चरणों में प्रणाम करना। स्कूल में कोई नहीं सिखाता है ये शिक्षा। ये शिक्षा किताबों के अंदर है नहीं। इसलिए किसी उर्दू के कवि ने कहा है, वो सब किताब काबिले जबत है, बंद कर दो उन किताबों को, फेंक दो, फाड़ दो, जला दो। जिनको पढ़ के बेटा बाप को बोले खपत है, वैसे किताब पढ़ने के बाद बेटा बाप को बोले तुम्हें पता नहीं लगता है, तुम कुछ समझते नहीं हो, तुम्हें क्या पता मोबाइल कैसे चलता है, तुम्हें क्या पता कंप्यूटर कैसे चलता है, तो मुझे ये पता है कि तू कैसे पैदा हुआ और तेरे को बताओ मैंने कैसे चलना सिखाया उंगली से पकड़ के, ये तो मेरे को पता है ना। ये संस्कृति हमारी कपूर की तरह उड़ती जा रही है, पेट्रोल की तरह हवा में उड़ रही है। घरों के अंदर मर्यादाएं नहीं रह गई। कारण क्या है? कारण यह है कि आध्यात्मिकता का अभाव है। सतशास्त्र की शिक्षाओं को सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले नहीं है। इसलिए ये कथा कोई, ये सत्संग या भागवत की कथा टाइम पास के लिए भी नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई भगवान से धन मांगने के लिए भी अभी नहीं है। अरे ये तो हमारे को अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए, हमारे को अपने आत्मा के उद्धार के लिए, सबको भला करने का संकल्प करने के लिए। बाकी दुनिया की चीजें तो वैसे ही भगवान जिसको देना चाहे दे सकता है, उसके लिए कोई कमी थोड़ी है देने की, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं। ये तो शिक्षा अति आवश्यक है हमारे अपने घरों के लिए। ये भागवत रामायण पहले जमाने में ऐसे पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये तो दादी दादा घर में अपने बच्चों पोतों पोतों को सिखाते थे। ये तो घरों में, ये घरों का शास्त्र है कि घर के अंदर कैसे रहना चाहिए, उसकी शिक्षा है। ये हमारी मर्यादाओं की शिक्षा है। ये तो ऐसे पंडित की तरह पोथी पढ़ के पढ़ने की नहीं है, कैसे हमको जीवन जीना है। ये भागवत धर्म जीने की कला सिखाता है कि हम किस तरीके से मर्यादा से जब तक जिए तो सबको सुख दें और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें। जब जाना हो तो अपने घर वापस भगवान के चरणों में लौट जाएं। ऐसा ठीक तरह से शिक्षा ग्रंथ शास्त्र के द्वारा होगी, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। आज महाराज परीक्षित ने जब बैल और गाय के ऊपर अत्याचार देखा, तलवार निकाली, मौत के भय से राजा के वेश में काला कलूटा व्यक्ति घुटनों पर नीचे गिर के शरणागत हो गया, महाराज प्राण रक्षा करो मैं आपकी शरण में हूं। क्षत्रिय का यह धर्म है कि कोई प्राण रक्षा मांगता है तो उसको मारता नहीं। कौन हो, मेरे राज के अंदर अधर्म क्यों कर रहे हो? महाराज मैं कलजुग हूं। वो कहने लगा मैं कलजुग हूं, अब मेरा राज आ गया है। महाराज परीक्षित ने कहा आप यहां नहीं रह सकते। कलजुग थर थर कांप रहा है। महाराज ने बेल की तरफ देखा और कहा आप कौन हैं? गाय की ओर देखा कि आप कौन हैं? किस कौन आपको मार रहा है? किसने आपके पांव काटे हैं? बैल कहता है कोई किसी को मारता नहीं है, हर एक के अपने कर्म उसको कष्ट देते हैं। महाराज परीक्षित कहता है मैं आंखों से देख रहा हूं कि ये आदमी हाथ में उठाया हुआ डंडा आपको मार रहा है, आप इसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा रहे हो। बैल कहता है नहीं, कोई किसी के मारने का कारण नहीं। महाराज परीक्षित को दिव्य दृष्टि थी, देखा कि ये बैल साधारण कोई बैल नहीं है, ये धर्म है। और बैल धर्म था, और धर्म ध्वज बैल के रूप में आदि भौतिक रूप धर्म का बैल है, और गाय पृथ्वी थी, पृथ्वी कलयुग के अत्याचार से भयभीत थी, कांप रही थी। तुम्हारे बच्चों को किसी ने मार दिया है क्या? पूछ रहा था धर्म, गाय से पूछ रहा था कि तुम्हें कोई मार